राम राम हरे हरे। प्रियपनशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, सनातन देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद्भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत सातवें स्कंद के नवें अध्याय में प्रहलाद महाराज की नरसिंहदेव को प्रसन्न शांत करने के लिए जो प्रार्थना है, उसकी 25वें श्लोक का हमने कल केवल संस्कृत का उच्चारण किया था। कुत आशीष श्रुति सुखा मृग तृषणी रूपा। बोला संसार में जो भी आशीर्वाद है वो केवल सुनने में सुख देता है, परंतु है मृग तृष्णा जैसा। कुवेदम कलेवरम अशेष रुजान विरोह। तो अगर हम सुख लेंगे संसार में, आशीर्वाद लेंगे, तो सुख लेंगे किससे? शरीर से। बोला शरीर कैसा है? बोला अशेष रुजान विरोह। ये शरीर तो अनंत रोगों का उत्पत्ति का स्थान है। तो संसार के सुख मृग तृष्णा, और जिस शरीर से सुख भोगते हैं वो अनंत रोगों का उत्पत्ति का उस स्थान है, तो कहां से सुख भोगेंगे? निर्विद्यते न तो जनो यद अपीति विद्वान। बड़े बड़े विद्वान भी, ये जो कामा अनल है, काम की अग्नि है, इच्छाओं की जो ज्वाला है, मधौ लवई लव मात्र, बड़े परिश्रम से प्राप्त किया हुआ।
डाउन स्पीक ऐसे, डाउन स्पीक क्यों रहे?
बड़े परिश्रम से प्राप्त किया हुआ सुख का आहुति डालते हैं समयम दुराप्यः, परंतु निर्वेद्य होना बहुत मुश्किल है। निर्वेद्य होने का मतलब अब पूरा हो गया, कुछ सुख मिलने वाला नहीं है, चलो भगवान के संसार से त्याग हो जाए, ये संभव नहीं हो रहा है। तो ये इस श्लोक का भाव है। श्रीपद श्रीधर स्वामी लिखते हैं, कहां तो सुनने में अच्छा लगने वाले तथा मृग तृष्णा के जल के समान मिथ्या विषय भोग। और जिससे विषय भोग किए जाते हैं, ये रोगों से युक्त शरीर भी है। शरीर है रोगों को जन्म देने वाला। इन दोनों बातों को जानने वाले विद्वान पुरुष भी कठिनाई से प्राप्त होने वाले भोगों की बूंदों से अपनी कामना रूपी अग्नि को शांत करते रहते हैं, और इन विषयों को सारहीन समझकर विरक्त नहीं हो पाते। ये निर्वेद्य का भाव है। ये संसार के भोग ये सारहीन है, इसमें कोई सार नहीं है, ये बेकार हैं, फिर भी इसको त्याग नहीं सकते हैं। अपने भावार्थ प्रकाशिक में लिखते हैं श्रीधर स्वामी, वर्तमान काल में भी, तो पहले क्या कहा था, स्वर्ग का सुख, ब्रह्मा जी के लोक का सुख नहीं चाहिए, आपके भक्तों की सेवा चाहिए। अब कहते हैं वो तो बाद में मिलेगा, अब वर्तमान काल में भी वे विषय भोग भोगने योग्य नहीं है। वर्तमान काल में भी विषय भोग भोगने योग्य नहीं है, इस बात को प्रहलाद जी ने कुत्रादि इस श्लोक में कहा है। जो विषय सुनने में ही अच्छे लगते हैं, किंतु वे मृग तृष्णा में प्रतीत होने वाले जल के समान मिथ्या हैं। कहां तो इस प्रकार के विषय भोग तथा कहां तो समस्त रोगों के उत्पन्न उत्पत्ति स्थान ये शरीर। यदि ऐसी बात है तो फिर सभी लोग इन विषय भोगों से विरक्त क्यों नहीं होते, ये प्रश्न उठता है। दोनों बातें तो सत्य है, एक तो मृग तृष्णा है और शरीर रोगों का आगार है। भोग मृग तृष्णा, भोग मृग तृष्णा और शरीर रोगों का आगार, फिर लोग विरक्त क्यों नहीं होते। इस पर प्रहलाद जी कहते हैं कि मनुष्य यद्यपि इन दोनों बातों को जानते हैं फिर भी वे इन विषय भोगों से विरक्त नहीं होते, फिर भी वो इन विषय भोगों से विरक्त नहीं होते। इसका कारण है कि कठिनाई से प्राप्त होने वाले मधु के समान सुख के कारण कणों से वे अपनी कामना रूपी अग्नि को शांत करते रहते हैं। इसका भाव क्या हुआ कि वृक्ष इसलिए नहीं होते हैं कि जो परिश्रम करके थोड़ा सा सुख प्राप्त होता है उससे जो इच्छाओं की अग्नि है उसमें एक आहुति डालते रहते हैं, तो वो अग्नि बुझने वाली तो है नहीं, वो अग्नि बुझने वाली तो है नहीं। इसलिए अतएव व्यग्रता के अभाव के कारण, व्यग्रता का अभाव का मतलब उनको दृढ़ संकल्प हुआ नहीं, व्यग्रता के अभाव के कारण संसार से विरक्त होने का कोई अवसर ही नहीं है। अथवा आपकी इस माया के चेष्टाएं अचिंत्य हैं। ये माया ऐसी है, सब दुख जीवन में उनको एक क्षण के सुख के सामने आते ही भुला देती है, और व्याग्रता ही नहीं होती है, तीव्रता ही नहीं होती है, क्या रखा है चलो भगवान का भजन करें, ये कामना उत्पन्न ही नहीं होने देती माया। ये कारण है कि जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, फिर भी विरक्ति नहीं हो रही। आप आइए श्री प्रभुपाद जी के भाव का और चक्रवर्ती जी के भाव का रसास्वादन करें। इस भौतिक जगत में सभी जीव भविष्य में इच्छाओं की पूर्ति का सुख मिलेगा इस आशा में आशीर्वाद मांगते हैं, परंतु यह है सारा मृग तृष्णा के मिथ्या जल के समान। कहां है मरुभूमि में जल, दूसरे शब्दों में कहां है सुख इस भौतिक जगत में, ये प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं। और भगवत गीता में तो भगवान ने कहा है दुखालयम, ये तो दुखमय शरीर है और सारी दुखमय संसार है। जहां तक ये शरीर है इसका क्या महत्व है, ये तो केवल अनंत रोगों को उत्पन्न करने का स्थान है। तो फिर तथाकथित दार्शनिक वैज्ञानिक बड़े बड़े राजनेता इन सब बातों को जानते हैं, भोग की मिथ्यता को भी जानते हैं और शरीर को रोग ग्रस्त है ये भी जानते हैं, फिर भी तुच्छ सुख को प्राप्त करने की चेष्टाएं करते रहते हैं, और वो सुख मिलना बहुत कठिन है, परंतु वो इंद्रियों को संयम में कर नहीं सकते, इच्छाओं को भगवान की सेवा में लगाने का विचार कर नहीं पाते हैं, फिर वो भी तथाकथित सुख के पीछे भागते रहते हैं, कभी भी सही निर्णय के ऊपर नहीं पहुंचते हैं। सही निर्णय क्या है कि संसार में सुख है नहीं और शरीर रोगों से मुक्त हो नहीं सकता है, इसलिए भगवान का शरण लेना चाहिए, इस निर्णय पे पहुंचते ही नहीं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं क्या क्या आवश्यकता है भौतिक वस्तुओं की, जो केवल देखने में ही सुख देती हैं, जिसके सुनने से ही केवल सुख की अनुभूति होती है। क्या इस शरीर की का महत्व है जो रोगों की उत्पत्ति का स्थान है? भले विद्वान कोई ये सब बातें जानता हो, फिर भी इच्छाओं की अग्नि को तृप्त करने के लिए बड़े परिश्रम से थोड़ी सी सुख की जो प्राप्ति हुई है उसकी बूंद उसमें डालता रहता है, परंतु विरक्त नहीं हो पा रहा। क्या है ये? हर एक व्यक्ति सुख चाहता है और शक्ति चाहता है, भोग और ऐश्वर्य चाहता है। ये भगवद गीता का एक श्लोक है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया परत चेतसां विवसाय आत्मा आत्मिका बुद्धि समाधाओ न विद्यते। ये दो चीजें, भोग और ऐश्वर्य। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, पूर्ण रूप से जो उसमें आसक्त है, प्रकृष्टेण रूपेण आसक्त, भोग में और ऐश्वर्य में। मेरे को भोग मिले, मेरा नाम हो, मेरे पास शक्ति हो, मेरा बल हो, मेरा वैभव हो, इसमें जो पूर्ण रूप से आसक्त है, भोगेश्वर्य प्रसक्तया पहर्त चेतसाम, उनके चित्त को हर लिया जाता है इन दो कामनाओं के कारण। उसकी चेतना हर ली जाती है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधाओ न विद्यते, एकाग्र चित्त होके समाधि नहीं लगा सकता, भगवान के चरणों की प्राप्ति नहीं कर सकता। परंतु सबको चाहिए भोग और ऐश्वर्य। इसके लिए, इसके कारण सभी अज्ञानी हैं। जो भोग और ऐश्वर्य के पीछे भागता है वो मूर्ख अज्ञानी है। जैसे राज है, मैं राजा बन जाऊं, मां मुख्यमंत्री बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं और मुझे सुख मिल जाएगा, ये भी मृग तृष्णा के जल जैसा है। सुनने में केवल अच्छा लगता है। कल हम कह रहे थे कि भगवान जैसे योग माया में अपने आप को ढक के रखते हैं, सबके सामने प्रकट नहीं होते हैं, ये भी भगवान की करुणा कृपा है। नहीं तो मूर्ख लोग भगवान को पता नहीं क्या अंठशंठ बोलना शुरू कर दें और पाप कर लें। तो उदाहरण में हमने कहा, भगवान को देखना तो दूर की बात है, आपके देश का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी ऐसे आके वृंदावन के अंदर दर्शन करने के लिए सामान्य लोग की तरह आ ही नहीं सकते। उनका मन भी करे कि महाप्रसाद मिल रहा है यहां लेके खा लूं, मंदिर के अंदर नहीं खा सकता। ये सुख उसको है ही नहीं, लिखा हुआ क्या करे। उसके आने के लिए लाखों लोगों के दर्शन को बंद करना पड़ता है और वो सुख ले नहीं सकता है, वो उधर भी भयभीत रहता है। तो लगता है कि ये पद बहुत बड़ा सुखदायी है, केवल सुनने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, परंतु जो उस स्थिति में है उनकी रात की नींदें हराम होती हैं, रात को सो नहीं पाते हैं, दिन को चिंताओं में घिरे होते हैं। तो ये केवल बाहर के दिखावा है, कान का रस है। और ये सुख कैसा है? बोला एक बिंदु के समान है, एक कतरे के समान है। क्यों? क्योंकि इस तुच्छ लव मात्र सुख के साथ चिंताएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, आसक्ति है, द्वेष है, ईर्ष्या है और प्रतिद्वंद्वता है। कोई भी बड़ा पद लो मिले या धन मिले या भोग मिले या ऐश्वर्य मिले तो चिंता लगी रहेगी, दुर्घटना की संभावना सदा बनी रहेगी, आसक्ति इतनी होगी कि और सोचना समझना भूल जाएगा, दूसरे के प्रति घृणा और ईर्ष्या और फिर प्रति द्वंद्वता, ये क्यों आगे बढ़ गया मुझसे, ये भौतिक जगत की पहचान है। मान लो कुछ थोड़ा सा सुख भी है, फिर भी वो सुख बड़े दुख का कारण है। किसको? राजा महाराज हो। क्यों? क्योंकि वो सुख को भोग ही नहीं सकते, दुख से कहना पड़ता है। वो स्वयं कहते हैं कि हमारा कभी कभी मन करता है कि ऐसे चले जाएं भगवान का दर्शन करने के लिए। मैं कह रहा हूं उनका मन हो सकता है कि गोलगप्पे खाने की इच्छा हो, कहीं जाके किसी चौराहे पे जो है आलू की टिक्कियां। सुबह तो हम कह रहे थे कि बांके बिहारी के सामने आलू की टिक्की खाना भी चाहे तो नहीं खा सकता है, खड़ा ही नहीं हो सकता है। क्या उसको वो इतने सारे सुख होने के बाद भी उसको भोगने के लिए इतने प्रतिबिंब है वो कर ही नहीं सकता है। मानो के सुख है फिर उसको भोग नहीं सकता है। अब यहां कारण लिखिए, क्योंकि शरीर रोगों का कारण है, शरीर में रोग भरे पड़े हैं, घर में सब माल भरा पड़ा है लेकिन खा नहीं सकता है। वो महात्मा किसी बहुत बड़े धनी सेठ के घर में भोजन के लिए बुलाया गया, महात्मा के लिए पूरियां आ रही है छनती हुई, और खीर आ गई है, रबड़ी आ गई है, हलवा आ गया है, बड़े स्वादिष्ट व्यंजन आ रहे हैं। तो महात्मा ने कहा भगवान को भोग लगाया, मां सेठ जी आप भी तो खा लिए। सेठ जी कहते हैं महाराज मैं पूरी तो नहीं खा सकता, मेरे को ब्लड प्रेशर है, मेरे को डॉक्टर ने सूखा एक चपाती खाने को कहा है। कोई बात नहीं, हलवा तो खा लीजिए, खीर तो थोड़ी पी लीजिए सेठ जी। महाराज शुगर की बीमारी है, क्या करूं, डायबिटीज है, ये भी नहीं खा सकता, ये देखो दाल का पानी पतला सा है, सूप की तरह पीता हूं। अरे सेठ जी ने कहा इतना सारा, संत ने कहा सेठ जी इतना सारा धन कमाया, इतना बड़ा वैभव, ये काजू पिस्ता भरा पड़ा है और ये इतने बड़े व्यंजन है, और आप खाने के लिए सूखा एक चपाती और दाल का सूप पीते हो, तो फिर ये सुख इतना है भोग तो नहीं पा रहे, क्योंकि रोग है शरीर में, कहां से भोगोगे। तो ये केवल देख के ही खुश होना है, तो फिर इतना परिश्रम करके इसको इकट्ठा करने की जरूरत क्या है। दिल में खुश हो जाओ कि ये जो कुछ पड़ा है मेरा ही है, इसमें क्या है? केवल देख के ही तो खुश हो रहे हो ना, खा तो सकते नहीं, सुख भोग तो सकते नहीं, ये संसार का हाल है। और इसलिए इस सुख के जो स्वभाव को जानता है, जानने वाला भी जो इस सुख के तुच्छता को, इस सुख की दुर्बलता को, इस सुख के लवेना आपी थोड़ी देर का सुख है, दुख का कारण है, ये भी जानता है, फिर भी इसी सुख की पूर्ति करने के लिए इच्छाओं की अग्नि में इस सुख की आहुति डाल रहा है, परंतु विरक्त नहीं हो रहा है, त्याग उत्पन्न ही नहीं हो रहा है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, एक बंगाली गीत है, मैंने बहुत सुंदर महल जैसा घर सुखपूर्वक जीने के लिए बनाया, परंतु दुर्भाग्य से आग लगी और सब भस्म हो गया। कितना समय एक बहुत सुंदर घर बनाने में लगता है, और प्रवेश के समय उसी ज्वाला की, अग्नि की ज्वालाओं के बीच में सारा घर भस्म हो जाए। बोला ये है भौतिक जगत। प्रभुपाद कहते हैं ये उदाहरण भौतिक जगत के सुख का जो भाव है उसको दर्शा रहा है। इस संसार का सुख ऐसा है, ये दिखा रहा है। हर एक व्यक्ति ये जानता है, फिर भी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है। कब? सुनकर, सोचकर, अरे ये करेंगे तो सुख मिल जाएगा, ये करेंगे तो सुख मिल जाएगा। जानता है कि नहीं मिलेगा, फिर भी योजनाएं बनाता रहता है, सुनकर और सोचकर। और हो सकता है बहुत अच्छा सुख मिल जाए, परंतु दुर्भाग्य से सारी योजनाएं समय के साथ मलियामेट हो जाती, उसका नाम निशान मिट जाता है। बड़े बड़े राजनेता हुए जिन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई, साम्राज्य बनाए बड़े बड़े, कहां गया मुगलों का साम्राज्य, आधी धरती के ऊपर सिकंदर का साम्राज्य कहां चला गया, ब्रिटिश का साम्राज्य आधी दुनिया के ऊपर था कहां चला गया, चंगेज खान और तैमूर लिंग का कहां गया शासन, कहां गया शासन शहनशाह अकबर का, सब इतिहास के पन्नों में दफन हो गए। ये सत्य है, बड़ी योजनाएं बनाई थी उन्होंने, बड़ी बड़ी हमारी साम्राज्य बनाएंगे और इसके अधिपति बनेंगे, संसार को अपने वश में कर लेंगे, परंतु काल ने सबकी योजनाओं के ऊपर, उनके राज सिंहासनों के ऊपर और बड़ी बड़ी बड़े बड़े साम्राज्यों के ऊपर पानी फेर दिया, समाप्त कर दिया, नाम निशान मिटा दिया। इसलिए प्रहलाद महाराज के इस शिक्षा से हम सबको एक लेसन लेना चाहिए, एक इस शिक्षा को समझना चाहिए कि अस्थाई तुच्छ क्षणक सुख के पीछे जितना प्रयास करेंगे, जितनी योजनाएं बनाएंगे भोग की, शरीर से सुख लेना और इंद्रियों का भोग करने का जितना भी परिश्रम करके योजनाएं बनाएंगे, सारे हम सब लोग बार बार अपनी योजनाओं में असफल होते जाएंगे और हताश होते जाएंगे। इसलिए इन तथाकथित योजनाओं को बनाने को बंद कर दो, क्यों बोला, जैसे कोई दधकती हुई आग में घी डालने से, थोड़ा सा घी डालने से उसको शांत नहीं करेगा और प्रज्वलित करेगा, ऐसे हमारी योजनाएं हमारी इच्छाओं को और उत्तेजित करेंगी, शांत नहीं कर सकती। आग में घी की आहुति आग को बढ़ाती है और इच्छाओं में भोग की आहुति इच्छाओं को बढ़ाती है। खुजली करने से खुजली मिटती नहीं है और बढ़ती है, घाव बनता है और अधिक समय तक रोक देता है। इसलिए ये जो इच्छाओं की अग्नि है वो भव भव महादावाग्नि है। भव मतलब जन्म मृत्यु, महादावा अग्नि है, ये एक वन की अग्नि है। जंगल में कोई अग्नि लगाता नहीं है, दो पेड़ आपस में घिस जाते हैं और भयानक आग लगती है। भगवान कृपा करके बरसा करें तो ठीक है, हमने देखा है ऐसे वन की अग्नि को। कनाडा में एक बहुत बड़ा भक्त, जहाँ प्रभुपाद जी की एक बहुत प्रिय शिष्य जमुना देवी रहती थी, और एक बहुत जंगल के अंदर कोई एकड़ों में नहीं किलोमीटरों में भक्त रहते थे, घर बना हुआ है, वहां रथ यात्रा होनी थी। क्या नाम अभी उस स्थान का मुझे याद नहीं होगा, 3-1 साल हो गए। बसें लेकर गाड़ियां लेकर वहां पहुंचे सब भक्त वैंकुवर से, तो कहा कि वन में आग लगी है, अंदर जा नहीं सकते, पुलिस खड़ी है, गाड़ियां रोक दी और आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। ऊपर से जहाज ला के पानी के गुब्बारे फेंक उनके ऊपर डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आग और भड़कती जा रही है एक से दूसरे वन के अंदर। हमने कहा इतनी दूर आए हैं, ये स्थान दोबारा कब देखने आएंगे, जाना है। एक भक्त को कहा, वो गाड़ी में बेचारा लेके हमको गया, उस जगह को दिखा के आया, मंदिर को, जहाँ ये तपस्या करते थे, अपना भजन कीर्तन करते थे। और वापस आए तो अंदर जा नहीं पाए उस वन की आग की वजह से। फिर थोड़ा आए एक नदी के किनारे, वहाँ जाके छोटी सी रथ यात्रा करके और कार्य पूरा किया। तो ये वन की अग्नि को बुझाने के लिए वो जहाज़ों से पानी गिरा रहे थे, बरसात का नमूना बना रहे थे, लेकिन वो बरसात जैसा काम नहीं कर पा रहा और सब खाली करा दिया। गीता नगरी नहीं, इसका नाम कुछ और था मेरे को, यानी गीता नगरी तो और जगह है। सुप्रभुपाद जी कहते हैं ये जो भव महादावाग्नि है ये बुझने वाली नहीं है, अपने आप होती है, किसी का प्रयास नहीं है। हम इस भौतिक जगत में सुखी होना चाहते हैं, जो कभी भी संभव नहीं है। और ही इच्छाओं की अग्नि को हम बढ़ाते रहेंगे और ये और प्रज्वलित होती जाएंगी। हमारी इच्छाएं कभी संतुष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे ये काल्पनिक और मृग तृष्णा जैसे विचार हैं और योजनाएं हैं कभी काम नहीं देंगी। हमको भगवान श्री कृष्ण की इस मुख्य शिक्षा, सर्वधर्मान परित्यजमामेकं शरणं व्रज, इसको स्वीकार करना चाहिए और फिर हम सुखी हो सकते। नहीं तो सुख के नाम में सदा ही दुख पले पड़ेगा। आगे प्रहलाद महाराज कहते हैं, क्वाहम रज प्रभव ईश तमोधिक अस्मिन् जात सुरितेर कुले क्वात्वानुकंपा, न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रम्माया, यन्मे अर्पितः शीर्षे पदम करस्प प्रसादः। प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौन मैं असुर कुल में रजोगुण के प्रभाव से तमोगुण की अधिकता वाला जन्म मेरा, जात ये मेरा जन्म है, असुर कुल में राजसिक और तामसिक प्रभाव है अधिक, कहां सुरर कुले कवा तवा अनुकंपा, और दूसरे तरफ कहां ब्रह्मा शंकर जी और लक्ष्मी रमाया, लक्ष्मी भवा शंकर, कितना उच्च कुल, क्या ऊपर के लोकों में रहते हैं, परंतु तब अनुकंपा आपकी कृपा मेरे ऊपर अधिक हुई। यनमे अर्पितः शीर्षे पदम कर प्रसाद, आपने अपना कर कमल मेरे सर के ऊपर कृपा के रूप में रखा, इन तीनों के सर के ऊपर नहीं रखा है, न ब्रह्मा जी के सर के ऊपर ना रखा, न शंकर जी के सर के ऊपर रखा, और न ये सामने खड़े हैं, उनके सामने प्रार्थना कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी खड़ा है, शंकर जी भी खड़ी है, लक्ष्मी भी खड़ी है, बोला इन्होंने प्रार्थना की, आपने इनके सर के ऊपर हाथ नहीं रखा, मेरे सर के ऊपर हाथ रखा, और मेरा जन्म तो तमो और रजोगुण के इस असुर कुल में हुआ, और ये कितने बड़े महान ऊपर के लोगों में, और लक्ष्मी तो आपकी साक्षात सेवा में, ये आपकी अनुकंपा कैसे मैं बताऊं, इसका क्या प्रभाव है। ये मेरे नाथ, मेरा जन्म तो असुर कुल में हुआ, जो प्रभुपाद के शब्दों में लिखा है, नारकी भौतिक वातावरण में हुआ, जहां रजो और तमो गुण का बोलबाला है, मेरी क्या स्थिति, और आपकी अहितु की कृपा का क्या वर्णन करूं। ऐसी कृपा जो न ब्रह्मा शंकर को मिली और न लक्ष्मी जी को मिली, मेरे सर के ऊपर आपने अपने कर कमल को रख के जो अनुग्रह किया है वो इनको नहीं प्राप्त हुआ। आपके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है, फिर भी आपने मुझे महान कर दिया, इतना बड़ा सर के ऊपर कर कमल रख के आशीर्वाद देकर। मैं आपकी कृपा की महिमा की क्या महिमा क्या गुणगान करूं, कितने ये आपकी महान अति महान करुणा और दया है। आपने अपना कर कमल मेरे सर के ऊपर रखा, जो ये आपके महान पार्षद भक्त उनके सर के ऊपर तो नहीं रखा। प्रभुपाद लिखते हैं, प्रहलाद महाराज आश्चर्यचकित हो गए भगवान की अयुतु की कृपा को देखकर, कहने लगे मेरा जन्म तो असुर कुल में हुआ है, और आपने मेरे सर के ऊपर तो अपना कर कमल रख दिया, और कभी भी इससे पहले भी ब्रह्मा शंकर या लक्ष्मी जी के सर के ऊपर अपना कर कमल नहीं रखा, जो आपके निरंतर पार्षद हैं, आपके संग संग हैं। ब्रह्मा जी आपके अंग से उत्पन्न हुआ, शंकर आपके ध्यान में सदा मगन रहता है, लक्ष्मी तो आपके चरणों की सेवा में है, पाद सेवन की आचार्य है। नरसिंह देव, आपने मेरे सर के ऊपर हाथ रख दिया, ये है आपकी अहितु की कृपा। और भगवान की ऐसी अहितु की कृपा किसी के ऊपर भी हो सकती, वो इस भौतिक जगत में कितना महान है कितना छोटा है या बड़ा है, इसका भगवान इसकी ओर नहीं देखते हैं। हर एक अधिकारी है और हर एक को ये अधिकार है कि वो भगवान की सेवा करे। उसकी भौतिक स्थिति क्या है, देवता है कि असुर है भगवान के ऊपर, इसका कोई अंतर नहीं। भगवद गीता में कहा है, जो भी माम चयो अभिविचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतय तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। कोई भी अनन्य भक्ति से मेरा शरण लेगा और उस साधन में कभी चूकेगा नहीं, कैसी भी परिस्थिति में डगमगाएगा नहीं, गिरेगा नहीं, तो प्रकृति के तीनों गुणों से परे ब्रह्म के स्तर पे पहुंचेगा। ऐसा प्रहलाद था जो हर विपत्ति में अटल रहा भगवान की भक्ति, पथ भ्रष्ट नहीं हुआ, गिरा नहीं, जो निरंतर भगवान की प्रेममयी सेवा में लगता है वो तो आध्यात्मिक जगत में पहले से ही स्थित हो जाता है, उसको भौतिक जगत से कुछ नहीं करना है। सत्व गुण रजोगुण तमोगुण इनका प्रभाव तो ऐसे भक्त के ऊपर होता ही नहीं है, क्योंकि भक्ति तो तीनों गुणों से परे है। और प्रहलाद महाराज तो उस आध्यात्मिक स्तर के ऊपर थे, उनका शरीर चाहे असुर कुल में उत्पन्न हुआ था परंतु फिर भी भागवत दूसरे पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 19वें श्लोक में भागवत ये निर्णय करके सुनाती है, तथा रजस्तमो भावा काम लोभाद्यश्च। तो रजो और तमो गुण के लक्षण क्या है ये लिखा है, दो लक्षण है, काम लोभ आदि, ये दोनों रजोगुण के लक्षण है, काम और लोभ दोनों रजोगुण के लक्षण है। आदि तमोगुण के हैं वो है आलस, निद्रा, मूर्खता, प्रमाद, तो ये लक्षण है। जन्म हुआ था हिरण्यकशिपु के घर में जो राजसिक और तामसिक वातावरण में हुआ था, परंतु प्रहलाद महाराज तो पूर्ण रूप से भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा हुआ था, इसलिए वो भौतिक जगत से ऊपर था। शुद्ध वैष्णव का शरीर चिन्मय हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है, भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव से परे हो जाता है। जैसे लोहे को आग में डालने से लोहा लाल होकर आग जैसा हो जाता है, ऐसे भक्ति की अग्नि से उसका शरीर सारे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से शोधन होके साफ होके चमकने चमक चमका चमक चमकने लगता है, चमचमाता हुआ चमकने लगता है। प्रकृति के गुणों के प्रभाव नहीं होता, वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो जाता है। श्रील मध्व आचार्य इस विषय में कहते हैं, लक्ष्मी देवी जो भाग्य की देवी है, जो जगत की माता है, उसको ऐसी कृपा नहीं मिली जैसी कृपा प्रहलाद महाराज ने प्राप्त की। जबकि लक्ष्मी देवी भाग्य की सदा भगवान की सेवा में निमग्न रहती है, इससे लगता है कि भगवान भक्तों की ओर अधिक आकर्षित होते। लक्ष्मी देवी एक प्रार्थना की थी हमने, एक वर्ष में जहाँ लक्ष्मी देवी रहती है और कामदेव की उपासना करती है, वहाँ लक्ष्मी देवी कहती है मुझे तो दिखावे के लिए छाती पे रख दिया है ना निशान के रूप में, परंतु भक्तों को आप हृदय के अंदर बिठाती हो। आप कहते हैं भक्त मेरे हृदय में है, तो मेरे को तो दुनिया को दिखाने के लिए आपने अपने वक्ष स्थल पे स्थान दिया है, परंतु वास्तव में आप प्रेम भक्तों से करते हो। और यहाँ वही मध्व आचार्य की परिभाषा है कि लक्ष्मी भले भगवान के अंग संग है, परंतु भगवान का झुकाव अपने भक्तों की ओर अधिक होता है। दूसरे शब्दों में जो सेवा प्रेमी भक्त करता है, वो सेवा लक्ष्मी की सेवा से भगवान को अधिक रुचिकर है। और फिर लक्ष्मी को अलग करके अब प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मा और इंद्र आदि, शंकर जी का नाम नहीं लिखा है, और अन्य देवता जो ऊपर के लोगों में रहते हैं, लोकों में रहते हैं, उनकी चेतना का भाव कुछ और है। उनकी चेतना कुछ और है, इसलिए उनके ऊपर असुर कभी आक्रमण करते हैं। तो वो क्या है चेतना उनकी? वो चेतना अपने आप को स्वामी मानने की है कि मैं स्वर्ग का राजा हूं, मैं इस ब्रह्मलोक का राजा हूं, ये सत्यलोक मेरे, मैं इसका अधिपति हूं। ये जो भावना है, जहां स्वामित्व का भाव आएगा वहां समस्या खड़ी होगी, क्योंकि एक ईश्वर कृष्ण और सब वृत्य, सेवक भाव चला गया और स्वामी का भाव आया तो संकट शुरू होगा। परंतु प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्तों के ऊपर वो भले किसी नीच लोक में क्यों ना हो, जैसे असुर कुल में उत्पन्न हुआ प्रहलाद, वो भी कृष्ण मां भावना में हर परिस्थिति में आनंदमय रहते हैं। परतः स्वतः कर्मतः, परतः किसी दूसरे के द्वारा, स्वतः अपने आप, कर्मतः जैसे अपने आप कार्य करे या कोई उसको और कार्य करने के लिए कहे, परंतु वो अपने जीवन में हर प्रकार से आनंदित होता है। तो ये श्लोक एक मध्व आचार्य ने ब्रह्म तर्क से, तारक से लिखा है। ये ऊपर जो अभी कहा गया है इसी श्लोक का अर्थ है। श्री ब्रह्मा ब्रह्मी विंद्रादि, ये वो शब्द है। श्री ब्रह्मा ब्राह्मी वि इंद्र आदि, तो ब्रह्मा जी और इंद्र आदि देवता, त्रिकत्त ता स्त्री पुरा शुटु ताहा त्रिकृत स्त्री पुरु शुटु ताहा तद अन्य च क्रमादेव सदा मुक्तौ स्मृतौ अपि हरि भक्तौ च तद ज्ञाने। अब त्रिकर्त स्त्री पुरु शुटातः ये भाव यह है कि इनके ऊपर हमेशा संकट आता रहता है, परंतु हरि भक्त सुखे च नियमेन तु परतः, ये जिस प्रभुपाद ने ये लाइन लिखी है ये वो है, परत स्वत कर्मणो वा कर्मतो वा न कथंचित तद अन्यथा। तो बड़े बड़े देवताओं के भाव के अंतर के कारण समस्याएं असुरों के द्वारा उनके ऊपर आपत्तियां आती रहती हैं, परंतु भगवान के भक्त जहां भी हो कैसी भी स्थिति में हो सदा ही भगवान की सेवा में आनंद पूर्वक रहते हैं। आगे प्रहलाद महाराज एक सिद्धांत बता रहे हैं, नईशा परावर मति भवतो ननु स्या जंतुर यथात्म सिर्दो सुहृद जगत दस तथापि संसेवया सुरतरयोर इव प्रसाद सेवानुरूपम उदयतो न परावरम न एव न न एषा इस प्रकार से नहीं। क्या किस प्रकार से नहीं? पर अवर मति भवतो भगवान आपकी मति आपकी बुद्धि आपकी सोच ये ऊंचा है ये नीचा है ये देवता है ये असुर है ये आपकी सोच नहीं। बोले ये किसकी सोच होती है? ननु स्याज जंतु ये तो सामान्य संसार के लोग सोचते हैं। क्या सोचते हैं संसार के? यथात्म सिद्ध ये मेरा अपना है, जगतस तथापि ये मेरा नहीं है। जगत के लोग ये मेरा है ये मेरा मित्र है ये मेरा शत्रु है मेरा है तेरा है, ये दुनिया कहती है ये मेरा अपना है ये ऊंचा है नीचा है। आपके लिए भगवान कोई ऊंचा नीचा नहीं है। संसेवया जो जैसी सेवा करता है, सुर तरोर का मतलब है कल्प वृक्ष जो वैकुंठ में है, सुर तरो तरो का मतलब वृक्ष, सुर का मतलब स्वर्ग लोक में है और वैकुंठ में लिखा है। इव जैसे कोई जाएगा कल्प वृक्ष के नीचे कहेगा कि मुझे आम दो तो आम देगा, और कहेगा अंगूर दो तो अंगूर देगा, और कहेगा करेला दो तो करेला देगा। तो जैसी वो उसकी तरह जो आपसे जो मांगते हैं उसको आप वो देते हो। संसेवया जैसे पूर्ण रूप से कोई आपकी सेवा में लगता है ना, चाहे ऊंचा हो या नीचा हो देवता हो या असुर हो आपकी लगा सेवा में तो आप तो हैं कल्प वृक्ष, उस सेवा के अनुरूप उसको फल देते। इवते प्रसाद आपकी कृपा उसकी सेवा के अनुरूप होती है, जैसे कल्प वृक्ष मांगने वाले की इच्छा के अनुरूप फल देता है। सेवानुरूपम उदयो न परावरम ऊंच नीच का ध्यान नहीं रखते हैं, सेवा के आधार पे फल देते। सामान्य जीव की तरह हे मेरे नाथ आप मित्र है कि शत्रु है ऐसा भेदभाव नहीं रखते, ये मेरा है और ये पराया है, इसका हित करूं इसका अहित करूं ये आपका विचार नहीं। क्योंकि ऊपर नीचे का बड़े और छोटे का आपके तो मन में भाव ही नहीं है, परंतु आप आशीर्वाद देते हैं सेवक की सेवा के अनुरूप, जैसे कल्प वृक्ष मांगने वाले की इच्छा के अनुरूप फल देता है। अब कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ महात्मा है या चोर है उससे कल्प वृक्ष को कुछ नहीं देना है, मांगना उससे कुछ नहीं लेना है, जो मांगा वो दे देगा, तो उसके लिए बड़े छोटे का कोई अंतर नहीं है। पर और अवर, पर का मतलब महान, अवर का मतलब छोटा, जन्म से ये नीच जाति का ये ऊंच जाति है, ये आपके विचार में नहीं है, ये मित्र है ये शत्रु है, ये आपका विचार नहीं है इस जगत में। जगत सारा ऐसे सोचता है लेकिन आप उससे अलग हैं। आपकी कृपा सेवा के अनुरूप मिलती है, जैसे कोई कल्प वृक्ष की सेवा करके मांगे तो उसको मिलेगा। तो सेवा के जितनी सेवा का स्तर है वैसे उसके अनुरूप उसको आप फल देते हैं, ऊंच नीच को नहीं देखते। आपकी कृपा जब आप देते हैं तो ऊंच नीच नहीं देखते हैं, ब्रह्मा महान है और ये असुर छोटा है, ऐसा आप नहीं देखते। आपके तो विचार में, आपकी मति में ये ऊंच नीच का भाव तो है ही नहीं। ये तो सामान्य जगत के लोग ऐसे सोचते हैं, जन तो मेरा तेरा। आप ऐसे क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि आप सारे जगत के सुहृद हो, आप सारे जगत के सुहृद हो, सब शुभ चिंतक हो। जैसे कल्प वृक्ष सभी की इच्छा को पूरा करता है, सबको एक जैसा फल नहीं, जिसका जैसी सेवा उसके अनुरूप फल फल मिलता है और वैसे ही कृपा मिलती है, परंतु जन्म के ऊंच नीच के आधार पे नहीं। तो आपकी कृपा का कारण है सेवा का स्तर। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवद गीता में लिखा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांग सततेव भजामि। जिस भाव से कोई मेरा शरण लेता है वैसे ही उसके साथ में प्रति व्यवहार करता हूं। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी ये शिक्षा दी है, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, सारे जीव भगवान के सेवक हैं, और जैसी जैसी सेवा जो करेगा अपने आप स्वत ही वैसा वैसा वो आशीर्वाद कृष्ण से पाएगा। क्योंकि भगवान छोटा ऊंच नीच कुछ नहीं देखते हैं, उनके पास कोई भी भेद बुद्धि है ही नहीं, जैसी सेवा करेगा वैसा फल पाएगा। ये मुझसे घनिष्ठ संबंध वाला है, इसको मैं नहीं चाहता हूं, तो ऐसा भगवान का विचार नहीं। भगवान तो सभी को कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज, किसी एक को नहीं कहते, सभी को कहते हैं मेरा शरण ले लो। और जितनी मात्रा में हम शरण लेंगे और भगवान की सेवा से संबंध स्थापित करेंगे, उसी मात्रा में भगवान हमारे साथ प्रतिव्यवहार करेंगे। तो हम ही कृपा कितनी हमको मिलेगी उसकी उसके उसका उसका सारा दायित्व हमारा है। अधिक सेवा करेंगे तो अधिक कृपा, कम सेवा करेंगे तो कम कृपा। जो मांगेंगे तो बाल हमारी कोर्ट में है, हमारी सेवा के अनुरूप भगवान से आशीर्वाद मिलेगा, कृपा मिलेगी। तो हम ही चुनते हैं कृपा कैसी चाहिए। जैसे कोई प्रार्थना करेगा वैसे ही भगवान उसको वरदान देंगे। कोई कहेगा स्वर्ग लोक में भेजो तो स्वर्ग में भेज देंगे। कोई कहेगा मैं कुत्ते बिल्ले की जूनी में लहके मौज करूंगा, जाओ रहो। प्रभुपाद जी एक प्रवचन दे रहे थे पाश्चात्य देशों में, एक दिन कहा कि कुत्ते बिल्ली की जूनी में दुख भोगना पड़ेगा, तो एक ने कहा कि क्या खराब ये कुत्ते की जूनी में। प्रभुपाद ने कहा मेरा आशीर्वाद है तो कुत्ता ही बना, बन जा। तो भगवान ऐसी जूनी की जिसकी इच्छा है उसको वो देते हैं, उसकी भावना ऐसी है कि मैं कुत्ता बिल्ली बनू धरती पे, जाओ बनो। तो हमारी इच्छा के ऊपर सब कुछ है, बड़ा छोटे का कोई प्रभाव नहीं है कि कोई बड़ा है या छोटा है। और भगवत गीता में इसके लिए लिखा है, यान की देवव्रता देवता की पूजा करेगा देवलोक में जाएगा, पितृ की पूजा करने वाला पितृ, भूतों की पूजा करने वाला भूत, और मेरा पुजारी मेरे पास आएगा। जो जिस भक्त का मांग है, जो मांगता है, वही फल भगवान की कृपा से मिलता। भगवान भेदभाव नहीं करते, ये मेरा, ये मैं इसका हित करूं, इसका अहित करूं, ये भगवान का विचार नहीं। ये मेरा, ये इससे मेरा स्नेह है और इससे मेरा द्वेष है, नहीं। वो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। इसलिए लिखा है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दी तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम। आपकी कोई कामना नहीं है, शुद्ध भक्त हैं, या सारी कामनाओं वाले कर्मी हैं, या मोक्ष की कामना वाले ज्ञानी हैं, कोई बात नहीं, सारे ही उदार बुद्धि वाले हो, आओ तीव्रता से कृष्ण भक्ति करो और अपने फल को प्राप्त करो, सबको मिल जाएगा। कोई भक्त है, कर्मी है या ज्ञानी है, परंतु सब जैसे भगवान की जैसी सेवा करेंगे उसके अनुरूप फल पाएंगे। तो यहाँ हमारा समय आज का पूर्ण आहुति पे पहुँचता है। हमारे श्रीधर स्वामी लिखते हैं, हे प्रभु कहाँ तो तमोगुणी सुर वंश में जा, ये तो हमने पढ़ लिया था। इसका भावार्थ ये था, तो फिर तुम क्यों उदास हो, भगवान पूछते हैं। उत्तर ये है कि यद्यपि मैं इसके योग्य न हुई हूं, फिर भी मुझ पर जो आपकी कृपा के कारण, इसी कृपा के कारण, इसी आशय से प्रहलाद जी ने कहा, मेरे जन्म रजोगुण से हुआ, तो ये सप्त भयंत कुल का विशेषण है, जिसमें तमोगुण की ही अधिकता होती है। सुर के वंश में मैं उत्पन्न हुआ और कहां तो आपकी मुझ पर अनुकंपा। श्री भगवान की अनुकंपा का वर्णन करते हुए प्रहलाद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी आदि के सिर पर जिसके अपने कभी नहीं रखा, सिर के पर किसको आपने कभी नहीं रखा हाथ को, उस कर कमल को जो सारे दुखों को दूर करने वाला है, ऐसा प्रसाद रूप आपने मुझे दे दिया, यह आपकी अनुकंपा है। संसारी जीवों में, अभी जो हमने श्लोक पढ़ा है, समान संसारी जीवों के समान आप में छोटे बड़े का भेद नहीं, ये भेदभाव है ही नहीं, क्योंकि आप सबों की आत्मा और अकारण प्रेमी हो, सुहृद हो, जगत के सुहृद हो। फिर भी आपका कृपा प्रसाद कल्प वृक्ष के समान सेवा और भजन से ही प्राप्त होता है। सेवा के अनुसार ही जीवों पर आपकी कृपा का उदय होता है। इसमें जातिगत ऊंचता नीचता का कारण नहीं है। ऐसा होना आपके लिए कोई विचित्र बात नहीं है, इस बात को प्रहलाद जी कहते हैं, क्योंकि आपने ब्रह्मा जी को नहीं दी, वो कृपा मेरे को दी, ये आपके अंदर विचित्र नहीं है। क्यों? क्योंकि इस श्लोक में कहते हैं, ये ब्रह्मा आदि उत्कृष्ट हैं और ये असुर नीच हैं, इस तरह की जातिगत छोटे बड़े की बुद्धि आप में है ही नहीं भगवान। ऐसा भेदभाव तो संसारी जीवन में होता है। इसका कारण है कि आप संपूर्ण जगत की आत्मा और अकारण प्रेमी हो, अकारण प्रेमी हो, सुहृद सर्वभूत, सबसे प्रेम करते हो। यदि आप कहें कि तो फिर मेरा सबों पर इस प्रकार का कृपा प्रसाद क्यों नहीं होता, आप लोग आप तो कहते हैं मेरे को तो सबके ऊपर क्यों नहीं होता, तो कहते हैं इसके उत्तर में प्रहलाद जी ने कहा, आपकी कृपा सेवा के अनुसार होने वाली इच्छा के अनुसार ही धर्म आदि का उदय होता है। आपकी कृपा सेवा के अनुसार होने वाली इच्छा, सेवा के अनुसार होने वाली इच्छा के अनुसार ही धर्म आदि का उदय होता है। इसका उदाहरण है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के द्वारा सेवा सेवकों के ही संकल्प अनुसार कामनाओं की पूर्ति होती है। इसमें छोटा बड़ा होना कारण नहीं है। एवं जनम निपततिम निपतितम प्रभाव प्रभावाहि कूपे, ये श्लोक कल पढ़ेंगे कि संसार में सब अंधे कुएं में मैं भी गिरने जा रहा था। भगवान कहते हैं फिर कृपा मैंने आपके ऊपर की, इसका कारण क्या है? तो कहते इसका कारण है नारद की कृपा, बिना भक्त की कृपा के भगवान की कृपा नहीं मिलती। ये श्लोक कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। कोई जिज्ञासा? हरे कृष्ण। कोई जिज्ञासा? हरे कृष्णा। कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो बोलिए, नहीं तो कृष्ण बलराम की जय।
प्रभुजी की
राधा श्याम सुंदर की जय।
गौर
निताय की जय।